हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनंत की गाड़ी रजिस्ट्रार के घर के सामने जाकर रुक गई। उसके पास बैठे आदमी ने अपनी पैंट की जेब से एक गन निकालते हुए लोड किया, जिसके साथ ही अनंत की आंखें फैल गईं और उसने बुदबुदा कर कहा, कहाँ फंस गया मैं? थोड़ी देर बाद वे सब लोग रजिस्ट्रार के हॉल में खड़े थे। वेदांत तो काफी परेशान था इस अजीब से माहौल को देखकर। उसने अनंत के कान में धीरे से कहा, भाई आप लंदन से आए हो या किसी माफिया की इंडस्ट्री से, ये सब क्या है? अनंत ने रोनी सूरत बनाकर वेदांत को देखा, जैसे कह रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं पता है। वहीं वो लड़की भी काफी डरी हुई थी और उसे देखकर लग नहीं रहा था कि फिलहाल वो अनंत या वेदांत में से किसी को भी अपनी सच्चाई बताने जितनी मजबूत है। वो फिलहाल बस यहाँ से बचने के रास्ते ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में लाचारी साफ थी, जिसे अनंत ने देख लिया था। बस उसे अफसोस इसी बात का था कि बलि का बकरा बनने के लिए वही मिला था उसे। तभी वहां एक गोली चलने की आवाज आई जो उस आदमी ने ही चलाई थी। ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए वो गोली सीधा हॉल की सीलिंग में जा लगी और उसके तुरंत बाद ही अपना निकर संभालते हुए रजिस्ट्रार लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में नींद साफ थी और वो गुस्से से बोला, किसकी इतनी हिम्मत है जो कानून के आदमी के घर जाकर गोली चला रहा है? तो उस गुंडे ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो कानून के आदमी, मैं कानून की औरत हूँ, इसलिए मैं गोली चला सकती हूँ। फिलहाल तुम हमारा काम करो। इतना बोलकर उसने उस लड़की और वेदांत अनंत को उसके सामने करते हुए कहा, इन दोनों की मैरिज रजिस्टर करनी है अभी के अभी। वो रजिस्ट्रार कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस आदमी ने अपनी गन उसके सिर पर पॉइंट करते हुए कहा, और अगर तुम कोई भी चालाकी करना चाहते हो तो मुझे पहले बता दो, मैं तुम्हें सीधे महात्मा के पास पहुंचा सकता हूँ। और तुम तो कानून के आदमी हो, फिर बेचारी कानून भी विधवा हो जाएगी। सोच लो, तुम किसी को विधवा करना चाहते हो? रजिस्ट्रार को उसकी सन की बातें सुनकर डर लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी करता हूँ। करीब आधे घंटे के बाद रजिस्ट्रार अपने घर में बने स्टडी रूम में चेयर पर बैठा था। सामने की टेबल पर उसने एक रजिस्टर रख रखा था और उसके सामने एक लैपटॉप था जिसमें वो इस मैरिज को रजिस्टर करने वाला था ताकि जल्द ही उन्हें सर्टिफिकेट भी दे सके। उसने पहले लड़की का नाम पूछा तो उसने डरते हुए कहा, राव्या पुरोहित। उस लड़की की जुबान लड़खड़ा रही थी, जिसे अब रजिस्ट्रार को भी बेचारी पर दया आ रही थी। उसने गुस्से से अनंत को देखा, क्योंकि उसे लग रहा था जरूर अनंत ही उसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। फिर उसने अनंत का नाम पूछा तो अनंत ने भी ठीक उसी तरह घबराते हुए कहा, अनंत निमानी। उसका नाम सुनकर वेदांत को छोड़कर बाकी सब की नज़रें उस पर आ चुकी थीं। उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो गुजरात के सबसे अमीर परिवार का लड़का हो सकता है। वहीं बेचारी राव्या की भी आंखें फैल गई थीं। उसे लग रहा था वो आसमान से टपकी और खजूर में अटकी वाली सिचुएशन में फंस चुकी है। उसे गरीब से गरीब इंसान से शादी करना मंजूर था, लेकिन अमीरों के घर कैसा माहौल होता है, इसकी छवि उसके दिमाग में अलग ही बनी हुई थी। उसे लगता है हर अमीर ज्यादा घमंडी होता है। रजिस्ट्रार ने उनकी मैरिज रजिस्टर करते हुए अपना गला सही करके कहा, तुम दोनों की साथ में फोटो चाहिए यहाँ चिपकाने के लिए। अनंत और राव्या दीवार के पास जाकर खड़े हो गए ताकि पीछे का बैकग्राउंड क्लीन आ सके। दोनों के चेहरे के फ्यूज उड़े हुए थे और उनकी वैसी ही तस्वीर खींची जा चुकी थी और उनके मैरिज सर्टिफिकेट पर चिपक भी गई थी। थोड़ी देर बाद वे तीनों गुंडे वेदांत, अनंत और राव्या को छोड़कर जा चुके थे। वे दोनों गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में निकल पड़ी। कुछ देर बाद जब अनंत को लगा कि उन गुंडों की गाड़ी बहुत दूर जा चुकी है तो उसने वेदांत पर चिल्लाते हुए कहा, वेदांत गाड़ी रोक। उसके इस तरीके से चिल्लाने पर वेदांत ने एक ब्रेक के साथ गाड़ी रोक ली और फिर हैरानी से कहा, क्या हुआ? अनंत ने फिर पीछे मुड़कर बैक सीट पर बैठी राव्या को देखकर कहा, उत्तर में उत्तरमा, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी नौटंकी नहीं खेल सकता हूँ। राव्या की आंखों में आंसू थे। उसने अपने आंसू पोंछकर गुस्से में कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी बनाकर रहने का, जा रही हूँ। इतना बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकल गई। अनंत ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, एटीट्यूड तो देखो मैडम का, जैसे मैं ही गया हूँ इसके पास बारात लेकर कि मुझे तुमसे शादी करनी है। चिपको कहीं की दिमाग खराब करके रखा था पिछले दो घंटे से। इतनी देर में घर पहुंचकर मैं सबसे मिलकर आराम भी कर लेता जितना टाइम इस मंदबुद्धि लड़की ने मेरा बर्बाद कर दिया है। वेदांत के चेहरे पर 12 बजे थे। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, अनंत तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी बीवी है वो। थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे तुम दोनों की लव मैरिज हो रही है और इतनी ही जल्दी तुम्हें वो मंद बुद्धि एटीट्यूड वाली और पता नहीं क्या क्या लगने लगी है। तुम तुम्हारे सेंस में तो हो ना। अनंत ने आंखें बंद करके गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मेरे भाई तुझे क्या बताऊं, ये लड़की फ्लाइट में मेरे साथ थी। मैंने इसे पानी ऑफर किया था तो साफ मना कर दिया कि मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, मैं खुद अपना पानी पी सकती हूँ। और जैसे ही हम फ्लाइट से नीचे उतरे उन तीनों आदमियों को देखकर इसने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया और एकदम सही बेचारी लड़की बन गई। न चाहते हुए भी मुझे उसकी मदद करनी पड़ी और खामखा में शादीशुदा बन गया। 2 घंटे पहले मैं कितना चिल इंसान था और अब मैं गॉड क्या करूं, लड़की मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। वेदांत को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। उसने जल्दी से कहा, हो सकता है वो लड़की सच में बहुत बड़ी परेशानी में हो और जैसा कि आप बता रहे हो उसके पीछे गुंडे भी पड़े हैं, तो हमें उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अनंत ने गुस्से में कहा, अगर तूने उस लड़की को लिफ्ट दी तो मैं घर जाकर सबको बता दूंगा कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर है। मैं तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखने वाला हूँ, समझा। और तू शादीशुदा है और मैंने सुना है भाभी बहुत पहुंची हुई चीज है, तो सोच ले तुझे जिंदा रहना है या नहीं। वेदांत ने विभा को याद किया। वो तो उसकी असिस्टेंट तक से जेलस महसूस कर रही थी। अगर उसे पता चला कि वेदांत किसी लड़की के साथ बैठकर आया है तो उसकी सारी फोटो डालेगी। वेदांत ने विभा को याद करते हुए डरते हुए नाम एक 3-4 बार गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है। टोमैटो को तो मैं बिल्कुल नहीं संभाल सकता हूँ। तुझे नहीं पता है उसकी ओवर थिंकिंग कौन से नेक्स्ट लेवल की होती है। चल छोड़, घर चलते हैं। इतना बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की। राविया भी उसी रास्ते आगे बढ़ रही थी पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे बार बार चक्कर आ रहे थे, फिर भी वो खुद को संभालते हुए धीरे धीरे चल रही थी। उसकी इस चाल को देखकर वेदांत ने धीरे से कहा, भाई मुझे लगता है वो बीमार भी है, उसकी तरफ देखो तो सही एक बार। अनंत ने अपनी आंखें बंद करके अपना सर चेयर के हेडरेस्ट पर टिका रखा था। उसने बिना आंखें खोले ही कहा, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधा घर चल और स्पीड आगे बढ़ा ले, इससे अच्छा तो बैलगाड़ी भी चलती है। वेदांत ने जैसे ही गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई राविया बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी, जिसके साथ ही वेदांत ने एक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी रोक दी और अनंत का सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा। अनंत ने गुस्से में कहा, सर फोड़ने का इरादा है क्या, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी है। वेदांत जल्दी से अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए बोला, वो लड़की बेहोश हो गई है, हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इतना निर्दयी इंसान नहीं हूँ मैं।
अनंत भी जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए गाड़ी से नीचे उतरा। वे दोनों दौड़कर राविया के पास गए। राविया के सर पर चोट लग चुकी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। अनंत ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, एक काम करते हैं पहले हॉस्पिटल चलते हैं। इतना बोलकर उसने राविया को गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया और फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी सर की चोट पर रख दिया। वेदांत ने फुल स्पीड से गाड़ी को अस्पताल की तरफ बढ़ा दिया।